आप सुन रहे हैं लाल पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 15। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। कुलदीप को टेबल की दराज से एक काले कपड़े में लिपटा हुआ कांच मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कांच यहां क्यों रखा है, लेकिन यह साफ था कि ऐसा कांच उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिस काले कपड़े में वो कांच लिपटा हुआ था उस पर कुछ इबारत लिखी थी। वो इबारत को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये इबारत इतनी धुंधली हो चुकी थी कि कुलदीप उसे समझ नहीं पाता है। और वो कांच, वो भी बड़ा अजीब सा था, बहुत ज्यादा वजनी, यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि वो चांदी जैसी किसी धातु का बना हो। कुलदीप उसे उलट पलट कर देखता है, यहां तक कि एक बार उसे ठोक कर भी देखता है, फिर सोचने लग जाता है क्या लिखा है इस कपड़े पर और ये कांच किस तरह का है, इतना वजनी, ऐसा कांच मैंने आज तक नहीं देखा, और ये इस घर में यहां क्या कर रहा है। एक मिनट, उस दिन विष्णु ने बताया था कि पापा के थैले के सामानों में एक कांच भी हुआ करता था, कहीं ये कांच पापा का ही तो नहीं था। इस बारे में अब मुझे विष्णु से ही पूछना पड़ेगा। रात हो चुकी है, विष्णु अपने कमरे में खाने पर कुलदीप का इंतजार कर रहा है। कुलदीप आता है और विष्णु को वो कांच दिखाते हुए पूछता है, विष्णु तो इस कांच के बारे में जानता है। विष्णु उस काले कपड़े में लिपटे कांच को हाथ में लेता है। उसे अपने हाथ में लेकर विष्णु कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो कहता है, कुलदीप मुझे याद आ गया, 20 साल पहले की उस रात को पापा जब बाहर जाने वाले थे, उनके जाने से पहले मैंने उनके थैले से ये कांच निकालकर टेबल की दराज में रख दिया था। मैंने सोचा था कि ये कांच देने के बहाने पापा के पीछे चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं दराज की चाबी कहां खो गई और ये कांच वहीं रखा रह गया। आखिरकार आज तुझे ये मिल ही गया। कुलदीप पूछता है, तुझे इस कांच के बारे में कुछ पता है, पापा क्या काम लिया करते थे इससे। विष्णु चुप हो जाता है। कुलदीप फिर से पूछता है, विष्णु ये कांच पापा के क्या काम आता था। विष्णु गौर से उस कांच को देख रहा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। कुलदीप एक दो बार और विष्णु को टोकता है, लेकिन वो जब जवाब नहीं देता तो कुलदीप उसे हाथ से हल्का सा धकेलता है। विष्णु कुलदीप की तरफ देखता है और फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और बोलता है,
लाल लाल लाल।
कुलदीप विष्णु को संभालता है और कहता है, विष्णु उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दे, विष्णु बी स्ट्रांग, तूने बहुत सह लिया, अब नहीं विष्णु विष्णु। तभी विष्णु एकदम से चुप हो जाता है। उसके हाव भाव से लगता है कि वो किसी चीज से डर रहा है। विष्णु हमेशा से ही ऐसी हरकतें किया करता है, लेकिन आज कुलदीप को इन हरकतों के पीछे का कारण समझ आ चुका है। वो विष्णु से कहता है, विष्णु, लेकिन विष्णु उसे अंगुली मुंह पर रखकर चुप होने का इशारा करता है। कुलदीप चुप हो जाता है। विष्णु कमरे के कोने की तरफ देख रहा है, कुलदीप भी उस तरफ देखता है। उसे कमरे के कोने में लाल साया दिखाई देता है, लेकिन यह लाल साया थोड़ा अलग था। यह इंसान के आकार का था और इसकी ऊंचाई करीब 10 फीट यानी इंसान से कोई 1.5 गुना थी। कुलदीप को पहली बार इंसानी आकार में यह साया दिखाई दिया था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर डरा हुआ विष्णु अपने आप में सिमट जाता है। कुलदीप को समझ आ जाता है कि इतने बरसों से उसका भाई पागल नहीं था। असल में उसे वाकई में यह लाल साया दिखाई देता था जो किसी और को नहीं दिखाई देता। कुलदीप का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। वो दरअसल इस लाल साये से अपने भाई के पिछले 20 सालों का हिसाब मांगना चाहता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उस साये की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन विष्णु उसका हाथ पकड़ लेता है। कुलदीप एक सेकंड के लिए विष्णु की तरफ देखता है और जितनी देर में पलटकर वो साये की तरफ देखता है वो साया वहां से गायब हो चुका होता है। कुलदीप गुस्से में अपने होश खो बैठा है। वो विशु से पूछता है, विशु किधर गया वो, किधर गया वो? विशु कुछ बोलता नहीं है, लेकिन कमरे की खुली हुई खिड़की की तरफ देखने लग जाता है। कुलदीप को समझ आ जाता है कि वो साया बाहर जा चुका है। वो बाहर जाने लगता है। अपने होशो हवास खो बैठने के बाद भी विशु इशारों से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुलदीप नहीं रुकता तो विशु उसे काले कपड़े में लिपटा वो कांच थमा देता है। विशु की आंखों में देखकर कुलदीप को समझ आ जाता है कि इस कांच का कोई ना कोई ताल्लुक लाल चांद से जरूर है। कुलदीप कांच को अपनी जैकेट में रखकर घर के पीछे खुली जगह पर आ जाता है। उसे वहां कुछ दूरी पर लाल इंसानी साया दिखाई दे रहा है। कुलदीप भागकर उसके पास जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो साया और आगे चला जाता है। लाल साये का पीछा करते करते कुलदीप अपने घर के पीछे वाली उस खुली जगह पर आ चुका है जिसके बाद जंगल शुरू होता है। यहां कुलदीप को वो साया नहीं दिखाई देता। कुलदीप बुदबुदाता है, आखिरकार तुम मुझे वहीं खींच लाए जहां आज से 20 साल पहले विशु गांव वालों को मिला था। अब मुझसे चाहते क्या हो? कुलदीप गौर करता है कि वो एकदम खुले मैदान में है जहां आसमान में चांद छाया है, लेकिन चांद लाल नहीं, सफेद और चमकीला है। वो चांद को गौर से देखने लगता है। उसके आशा के अनुरूप ही थोड़ी देर में चांद का रंग लाल होने लगता है और कुछ ही देर में चांद एकदम गहरे लाल रंग का हो जाता है। कुलदीप के होठ बुदबुदा उठते हैं। लाल चांद, खून जैसे लाल रंग का चांद। कुलदीप को वाकई पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। असल में ऐसा लग रहा था कि कुलदीप आत्मसमर्पण के लिए ही वहां आया था, क्योंकि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था, या शायद वो इस वक्त यहां लड़ने भी नहीं आया था। वो तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस लाल चांद के पीछे कौन सी ताकत है। आसमान में हर तरफ गहरी लालिमा छाई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चारों तरफ लाल रोशनी कर दी हो। कुलदीप को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा जब उसके सामने आसमान में लाल रंग का वो इंसानी साया प्रकट हो गया। कुलदीप एक टक दम साधे उसे देख रहा था। 10 फीट की लाल रंग की इंसानी आकृति, और उसमें से लाल रंग चारों तरफ कुछ ऐसे फैल रहा था जैसे किसी मशाल से निकलने वाली आग की लपटें। ये जो भी चीज थी वो आसमान से उतरकर सीधे उसके पास आ रही थी। गौर से देखने पर कुलदीप को पता लगा कि ये बस एक परछाई ही है, क्योंकि बीच में पेड़ पौधों या किसी और चीज के होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुलदीप को वाकई पता नहीं था कि आगे क्या करना है या क्या होने वाला है। अब तक वो साया उसके पास, उसके सामने आ चुका था। तभी वातावरण में एक इंसानी आवाज गूंज उठती है। बहुत दूर तक आ गए हो तुम कुलदीप। इतना दूर जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं है, लेकिन याद रखो, इतना कुछ जानने के बाद भी तुम कुछ नहीं जानते हो। यह घटना तो हजारों सालों से धरती पर होती आ रही है, कभी यहां कभी किसी और जगह है, लेकिन आज तक धरती के लोग इसके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि यह घटना खास समय खास जगह पर मौजूद कुछ खास इंसानों को ही दिखाई देती है, और जो इसे देख लेता है वो इसे बताने के लिए इस धरती पर नहीं बसता, और कोई बच भी गया तो वो किसी को बताने लायक नहीं रहता, जैसे तुम्हारा भाई। वैसे अच्छा किया तुमने जो तुम खुद यहां चले आए, वरना मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ता, क्योंकि इस जगह ये इस बार की आखिरी रात है, इसके बाद पूरे 20 साल का इंतजार। कुलदीप समझ जाता है कि उसके पास बचने की संभावना ना के बराबर है। शायद इसी बात ने उसके डर को खत्म कर दिया था। वो पूछता है, तो क्या करोगे तुम, मुझे भी गायब कर दोगे? वो साया जवाब देता है, नहीं, तुम्हारी किस्मत में गायब होना नहीं लिखा है। गायब होना होता तो कल रात ही तुम गायब हो चुके होते, लेकिन अब तुम किसी को यह सच्चाई बताने लायक नहीं रहोगे, ठीक तुम्हारे भाई विशु की तरह। पूरे 20 सालों के लिए तुम्हारा दिमाग मेरा गुलाम हो जाएगा। धरती पर लोग इसे पागल होना बोलते हैं। 20 साल बाद वापस कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे दिमाग को छोड़कर बाहर घूमूंगा। लोगों को लगेगा कि तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद अगले 20 साल फिर से तुम्हारा दिमाग मेरा गुलाम रहेगा। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूरे 20 साल तुम्हारे साथ रहूंगा। और हां, सिर्फ तुम मुझे देख सकोगे, बाकी कोई नहीं। अब लाल साया बाहें फैलाए धीरे धीरे कुलदीप की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। कुलदीप जानता है कि इससे भागना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अपने रिवॉल्वर निकालकर उस पर 2-3 फायर करता है। लेकिन परछाई को गोली थोड़े ही मारी जा सकती है, गोलियां उस साये से पार होकर चली जाती है। वातावरण में लाल साये के जोर के अट्टहास की आवाज गूंज पड़ती है। कुलदीप के पास अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये जानते हुए भी कि इस साये से जीता नहीं जा सकता, वो जंगल की तरफ भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुलदीप एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसे आगे का रास्ता बंद नजर आता है। अब कुलदीप के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो साया उसके पास आता है और उसके सिर की तरफ अपनी बाहें बढ़ा देता है। कुलदीप को लगता है कि अब कुछ देर में ये लाल साया उसके दिमाग पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बचे हुए वक्त में भी वो अपना दिमाग तेजी से दौड़ाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक कांच है। कुलदीप को नहीं पता था कि वो कांच क्या काम आता है, लेकिन वो अपनी जैकेट की जेब में रखा कांच निकालकर उस साये के सामने करता है। अचानक एक चमत्कार सा होता है, वो साया एकदम से उससे दूर हो जाता है, जैसे उसे कोई करंट लगा हो। एक सेकंड में ही कुलदीप को समझ आ जाता है कि ये कांच उसका इस साये से बचने का एकमात्र हथियार और मौका है। कुलदीप उस कांच को लेकर संभलता हुआ उस साये के पास जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो साया भी अब संभलने की कोशिश कर रहा है। उस साया वहां से और पीछे हट जाता है। कुलदीप उस कांच को लेकर उस साये की तरफ बढ़ता है और कहता है, कहां भाग रहे हो तुम, पास आओ मेरे। अचानक वो साया वहां से गायब हो जाता है। कुलदीप संभलता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुछ सेकंड में ही कुलदीप को दूसरी तरफ वो साया नजर आता है। कुलदीप के कांच उसके आगे करते ही वो साया फिर से गायब हो जाता है। साया बार बार कुलदीप के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुलदीप एक ढाल की तरह उस कांच को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस कांच के आगे उस साये की शक्तियां भी कम पड़ रही हैं। कुलदीप को ऐसा भी लगने लगा था कि इस कांच के सामने वो साया कमजोर पड़ने लगा है। पहले जिस रफ्तार से वो साया अपनी जगह बदल लेता था, अब उसकी वो रफ्तार धीमी पड़ गई थी। कुलदीप को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई थी कि वो ये लड़ाई जीत सकता है। कुलदीप उस कांच को लिए उस साये की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे विशु की आवाज सुनाई दी। कुलदीप, कुलदीप चौंक कर आवाज की तरफ देखता है। विशु उसके पास आ रहा था। वो आते ही बोलता है, इसे आज छोड़ना नहीं है, हमारे परिवार को उजाड़ कर रख दिया इसने। कुलदीप भी कहता है, हां विशु, आज इसका किस्सा खत्म होने वाला है। कुलदीप उस साये की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन विशु उससे कहता है, कुलदीप ये मुझे करने दे, 20 साल का हिसाब चुकाना है मुझे। कुलदीप विशु की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में उसे पिछले 20 सालों का दर्द दिखाई दे रहा है। कुलदीप भी भावनाओं के समंदर में डूब जाता है। वो विशु को वो कांच थमा देता है। विशु कांच लिए उस साये की तरफ बढ़ता है। कुलदीप के कलेजे को यह सोचकर ठंडक मिल रही है कि उसका भाई ही इस कहानी को खत्म करने वाला है। विशु उस साये के पास पहुंचने वाला है, लेकिन तभी विशु उस कांच को वहां एक पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। कांच के टुकड़े हो जाते हैं। कुलदीप एक सेकंड के लिए समझ नहीं पाता कि यह क्या हुआ है। वो चिल्लाता है, विशु ये क्या किया। आप सुन रहे थे कहानी लाल, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। ये था एपिसोड 15। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इसके सीजन 1 का आखिरी एपिसोड कल अपलोड हो जाएगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस कहानी का रिव्यू अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखें। आप चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वो कहानियां पेज पर भी अपने कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि आप इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं। शुक्रिया। फिर मिलते हैं लाल सीजन 1 के आखिरी एपिसोड के साथ। सुनते रहिए वो कहानियां।